This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education. June 2013 examination in Hindi as a second language. Paper 2, listening. Turn over now.
प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे। उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा। संवाद एक।
क्या बात है सुभाष, आज तुम इतिहास की कक्षा में नहीं आए?
चुप रहो, मुझे हॉकी के अभ्यास के लिए जाना पड़ता है।
ठीक है, मुझे क्या है, वैसे खेल दिवस है कब?
इतना भी पता नहीं, 14 नवंबर को है हर साल की तरह।
मुझे तो कला दिवस याद रहता है, हर साल दिवाली के अगले दिन। संवाद दो।
यह केंद्रीय सचिवालय मेट्रो लाइन है, कृपया दरवाजों से हट कर खड़े हों। अगला स्टेशन खान मार्केट है, दरवाजे दाहिनी तरफ खुलेंगे। चिड़ियाघर और पुराना किला जाने वाले यात्री यहीं उतरें। अपना सामान साथ ले जाना न भूलें। धन्यवाद। संवाद तीन।
नमस्ते गुप्ता जी, आप लौट भी आए लंदन से और हमें खबर तक नहीं?
अरे नहीं रीता जी, लंदन तो जाना ही नहीं हुआ, मैं तो मुंबई गया था।
अच्छा, मुंबई में तो आपकी बिटिया है ना, सब ठीक तो है?
नहीं रीता जी, बिटिया तो लंदन में है, मुंबई में तो मौसी जी रहती हैं, आप मिली तो हैं उनसे?
अरे हाँ, वही तो जो पिछले साल आई थी।
संवाद चार।
साथियों, मेरी बात ध्यान से सुने। गोमुख की चढ़ाई में पूरा दिन लगता है, इसलिए हम सवेरे सवेरे रवाना होंगे। पहाड़ी रास्ते में कभी भी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए अपने साथ बरसाती और छड़ी जरूर लेकर चलिएगा। चाय और पानी खच्चरों पर लदा है, फिर भी आप सबको अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए।
संवाद पांच।
बेटा, अक्षरधाम मंदिर का रास्ता कौन सा है?
आपके सामने ही तो है माताजी, बस थोड़ा चलना पड़ेगा।
क्यों, यहाँ कोई रिक्शा विक्शा नहीं चलता क्या?
रिक्शे की क्या जरूरत है, आगे से दाईं ओर जाकर बाएं घूम जाइए, वहाँ स्वागत केंद्र से आपको मंदिर की पालकी मिल जाएगी।
भगवान तेरा भला करे बेटा। संवाद छह।
क्षमा करें, मौसम विभाग की सभी लाइनें इस समय व्यस्त हैं। यदि आप अगले 24 घंटे के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर 1 डायल करें। यदि आप अगले सप्ताह के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर 2 डायल करें। और यदि आप किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो कृपया लाइन पर बने रहें।
अभ्यास एक के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद एक।
क्या बात है सुभाष, आज तुम इतिहास की कक्षा में नहीं आए?
चुप रहो, मुझे हॉकी के अभ्यास के लिए जाना पड़ता है।
ठीक है, मुझे क्या है, वैसे खेल दिवस है कब?
इतना भी पता नहीं, 14 नवंबर को है हर साल की तरह।
मुझे तो कला दिवस याद रहता है, हर साल दिवाली के अगले दिन। संवाद दो।
यह केंद्रीय सचिवालय मेट्रो लाइन है, कृपया दरवाजों से हट कर खड़े हों। अगला स्टेशन खान मार्केट है, दरवाजे दाहिनी तरफ खुलेंगे। चिड़ियाघर और पुराना किला जाने वाले यात्री यहीं उतरें। अपना सामान साथ ले जाना न भूलें। धन्यवाद। संवाद तीन।
नमस्ते गुप्ता जी, आप लौट भी आए लंदन से और हमें खबर तक नहीं?
अरे नहीं रीता जी, लंदन तो जाना ही नहीं हुआ, मैं तो मुंबई गया था।
अच्छा, मुंबई में तो आपकी बिटिया है ना, सब ठीक तो है?
नहीं रीता जी, बिटिया तो लंदन में है, मुंबई में तो मौसी जी रहती हैं, आप मिली तो हैं उनसे?
अरे हाँ, वही तो जो पिछले साल आई थी।
संवाद चार।
साथियों, मेरी बात ध्यान से सुने। गोमुख की चढ़ाई में पूरा दिन लगता है, इसलिए हम सवेरे सवेरे रवाना होंगे। पहाड़ी रास्ते में कभी भी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए अपने साथ बरसाती और छड़ी जरूर लेकर चलिएगा। चाय और पानी खच्चरों पर लदा है, फिर भी आप सबको अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए।
संवाद पांच।
बेटा, अक्षरधाम मंदिर का रास्ता कौन सा है?
आपके सामने ही तो है माता जी, बस थोड़ा चलना पड़ेगा।
क्यों, यहाँ कोई रिक्शा विक्शा नहीं चलता क्या?
रिक्शे की क्या जरूरत है, आगे से दाईं ओर जाकर बाएं घूम जाइए, वहाँ स्वागत केंद्र से आपको मंदिर की पालकी मिल जाएगी।
भगवान तेरा भला करे बेटा। संवाद छह।
क्षमा करें, मौसम विभाग की सभी लाइनें इस समय व्यस्त हैं। यदि आप अगले 24 घंटे के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर 1 डायल करें। यदि आप अगले सप्ताह के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर 2 डायल करें। और यदि आप किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो कृपया लाइन पर बने रहें।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न 7। भारत के दक्षिणी राज्य केरल के पर्यटन आयुक्त TS राघवन के साथ संगम रेडियो की संवाददाता सरिता जोशी की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
टीएस राघवन जी, यात्रा के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद सरिता जी।
राघवन जी, ओणम का त्योहार आने वाला है, ये बताइए कि ओणम पर होने वाली उन नौका दौड़ों की तैयारियां कैसी चल रही हैं जिनमें विश्व प्रसिद्ध सर्प नौकाएं भाग लेती हैं?
पूरे जोर शोर से चल रही हैं सरिता जी, और सर्प नौका दौड़ को देखने के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
अच्छा, ये बताइए कि इन नौकाओं को सर्प नौका क्यों कहते हैं?
इनकी बनावट की वजह से। ये 100 से लेकर 138 फुट लंबी और मात्र 6 फुट चौड़ी होती हैं। इनकी थूथन लंबी और नुकीली होती है और पूंछ 20 फुट ऊंची होती है। अपनी इस बनावट के कारण ये पानी पर अपना फन उठाकर तैरते सर्प या सांप जैसी लगती हैं। एक तो इन्हें काली लकड़ी से बनाया जाता है और उस पर मछली और नारियल का तेल मला जाता है ताकि ये पानी पर आसानी से फिसल सकें।
राघवन जी, ओणम का सर्प नौका दौड़ से क्या संबंध है? जहां तक मेरी जानकारी है, ओणम तो धान की फसल और नए साल का त्योहार है।
सरिता जी, सर्प नौका दौड़ का संबंध भगवान विष्णु से है, जिनकी ओणम के दौरान पूजा की जाती है। दक्षिणी केरल के आरणमुला गांव में पंबा नदी के किनारे भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के सामने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले इन सर्प नौकाओं की झांकी निकाली जाती है। उसके बाद लगभग 2 मील लंबी दौड़ शुरू होती है, जिसमें जीतने वाली नौका को ट्रॉफी के रूप में भगवान विष्णु की सुनहरी प्रतिमा दी जाती है।
लेकिन हमने सुना है कि सर्प नौका दौड़ तो कई जगहों पर होती है।
आपने ठीक सुना है सरिता जी, लेकिन आरणमुला की सर्प नौका दौड़ सबसे पुरानी और सुंदर मानी जाती है।
ऐसी क्या विशेषता है इस दौड़ में राघवन जी?
इसकी विशेषता यह है कि गांव वाले अपनी अपनी सर्प नौकाओं को सुनहरे आभूषणों और फूलों से सजाते हैं। उनकी पूंछ पर अपने अपने गांव के झंडे लगाते हैं। नौका चलाने वाले खेवक और ताल ठोंकने वाले सफेद धोती और रंग बिरंगी पगड़ियां पहनते हैं और हाथों में रंग बिरंगे छत्र लेकर उनको घुमाते हैं। खेवक और ताल ठोंकने वाले बड़े जोश के साथ एक लय में गीत गाते हैं जिसकी छटा देखते ही बनती है।
इन सर्प नौकाओं में कुल कितने खेवक और ताल ठोंकने वाले सवार होते हैं?
सरिता जी, हर सर्प नौका में खेवकों के 64 जोड़े होते हैं, जो दोनों किनारों पर कतार में बैठकर लय और ताल के साथ गाते हुए चप्पू चलाते हैं। इनके अलावा 3 मुख्य खेवक भी होते हैं, जो अपने 12 फुट लंबे चप्पुओं से नाव को दिशा देते हैं, और एक प्रधान नाविक होता है। खेवकों में जोश भरने के लिए 25 गायक होते हैं, जो खेवकों की कतारों के बीच की जगह में बैठते हैं। 8 ताल ठोंकने वाले होते हैं, जो नौका के मध्य भाग में बने प्लेटफार्म पर खड़े होकर गाने और ताल ठोंकने के साथ साथ रंग बिरंगे छत्र भी घुमाते रहते हैं।
और इस दौड़ में लगभग कितनी नौकाएं भाग लेती होंगी राघवन जी?
लगभग 30 से 40। जब इतने सारे खेवक जोश में आकर एक लय और ताल में गाते और अपने चप्पू चलाते हैं, तो ये नौकाएं एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य पैदा कर देती हैं। इसीलिए देश विदेश से लाखों पर्यटक केरल की सर्प नौका दौड़ों को देखने के लिए आते हैं।
राघवन जी, सर्प नौका दौड़ की यह अद्भुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 2 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
टीएस राघवन जी, यात्रा के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद सरिता जी।
राघवन जी, ओणम का त्योहार आने वाला है, ये बताइए कि ओणम पर होने वाली उन नौका दौड़ों की तैयारियां कैसी चल रही हैं जिनमें विश्व प्रसिद्ध सर्प नौकाएं भाग लेती हैं?
पूरे जोर शोर से चल रही हैं सरिता जी, और सर्प नौका दौड़ को देखने के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
अच्छा, ये बताइए कि इन नौकाओं को सर्प नौका क्यों कहते हैं?
इनकी बनावट की वजह से। ये 100 से लेकर 138 फुट लंबी और मात्र 6 फुट चौड़ी होती हैं। इनकी थूथन लंबी और नुकीली होती है और पूंछ 20 फुट ऊंची होती है। अपनी इस बनावट के कारण ये पानी पर अपना फन उठाकर तैरते सर्प या सांप जैसी लगती हैं। एक तो इन्हें काली लकड़ी से बनाया जाता है और उस पर मछली और नारियल का तेल मला जाता है ताकि ये पानी पर आसानी से फिसल सकें।
राघवन जी, ओणम का सर्प नौका दौड़ से क्या संबंध है? जहां तक मेरी जानकारी है, ओणम तो धान की फसल और नए साल का त्योहार है।
सरिता जी, सर्प नौका दौड़ का संबंध भगवान विष्णु से है, जिनकी ओणम के दौरान पूजा की जाती है। दक्षिणी केरल के आरणमुला गांव में पंबा नदी के किनारे भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के सामने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले इन सर्प नौकाओं की झांकी निकाली जाती है। उसके बाद लगभग 2 मील लंबी दौड़ शुरू होती है, जिसमें जीतने वाली नौका को ट्रॉफी के रूप में भगवान विष्णु की सुनहरी प्रतिमा दी जाती है।
लेकिन हमने सुना है कि सर्प नौका दौड़ तो कई जगहों पर होती है।
आपने ठीक सुना है सरिता जी, लेकिन आरणमुला की सर्प नौका दौड़ सबसे पुरानी और सुंदर मानी जाती है।
ऐसी क्या विशेषता है इस दौड़ में राघवन जी?
इसकी विशेषता ये है कि गांव वाले अपनी अपनी सर्प नौकाओं को सुनहरे आभूषणों और फूलों से सजाते हैं। उनकी पूंछ पर अपने अपने गांव के झंडे लगाते हैं। नौका चलाने वाले खेवक और ताल ठोंकने वाले सफेद धोती और रंग बिरंगी पगड़ियां पहनते हैं और हाथों में रंग बिरंगे छत्र लेकर उनको घुमाते हैं। खेवक और ताल ठोंकने वाले बड़े जोश के साथ एक लय में गीत गाते हैं जिसकी छटा देखते ही बनती है।
इन सर्प नौकाओं में कुल कितने खेवक और ताल ठोंकने वाले सवार होते हैं?
सरिता जी, हर सर्प नौका में खेवकों के 64 जोड़े होते हैं, जो दोनों किनारों पर कतार में बैठकर लय और ताल के साथ गाते हुए चप्पू चलाते हैं। इनके अलावा 3 मुख्य खेवक भी होते हैं, जो अपने 12 फुट लंबे चप्पुओं से नाव को दिशा देते हैं, और एक प्रधान नाविक होता है। खेवकों में जोश भरने के लिए 25 गायक होते हैं, जो खेवकों की कतारों के बीच की जगह में बैठते हैं। 8 ताल ठोंकने वाले होते हैं, जो नौका के मध्य भाग में बने प्लेटफार्म पर खड़े होकर गाने और ताल ठोंकने के साथ साथ रंग बिरंगे छत्र भी घुमाते रहते हैं।
और इस दौड़ में लगभग कितनी नौकाएं भाग लेती होंगी राघवन जी?
लगभग 30 से 40। जब इतने सारे खेवक जोश में आकर एक लय और ताल में गाते और अपने चप्पू चलाते हैं, तो ये नौकाएं एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य पैदा कर देती हैं। इसीलिए देश विदेश से लाखों पर्यटक केरल की सर्प नौका दौड़ों को देखने के लिए आते हैं।
राघवन जी, सर्प नौका दौड़ की यह अद्भुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8 से 13। कोलकाता में दवादाता मेडिकल बैंक नाम की परोपकारी संस्था के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी कार्यकर्ता संध्या चटर्जी के साथ लोकमत के संवाददाता वरुण राय की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगा कर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
संध्या जी, जन चेतना और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
संध्या जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आपकी संस्था दवादाता मेडिकल बैंक क्या करती है?
वरुण जी, दवादाता मेडिकल बैंक के स्वयंसेवी घर घर जाकर लोगों से उन दवाओं और चिकित्सा सामग्री को इकट्ठा करते हैं जो इलाज और इस्तेमाल के बाद बच जाती हैं। इसके बाद इन दवाओं की तारीख की जांच की जाती है और जिन दवाओं की तारीख न गुजरी हो उन्हें कोलकाता की झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद रोगियों में बांटकर उनका इलाज किया जाता है।
बड़ा ही नेक काम है संध्या जी, लेकिन इसका विचार पहले पहल किसके दिमाग में और कैसे आया?
इसका विचार लगभग 30 साल पहले हमारी संस्था के संस्थापक तरुण बोस के मन में आया। उन्हें स्कूल के दिनों से ही यह बात परेशान करती थी कि उनके आसपास की गरीब बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग पैसा न होने के कारण दवाएं नहीं खरीद पाते थे और रोगों का शिकार बन जाते थे। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी होते ही घर घर जाकर बची कुची दवाओं का दान लेना शुरू किया और उससे गरीबों के इलाज के लिए एक मेडिकल बैंक बनाया जो आज तक बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है।
शुरू शुरू में तो लोगों को ये बात अटपटी लगी होगी, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तरुण जी को?
देखिए, दिक्कतें तो हर काम की शुरुआत करने में आती हैं। मुझे याद है तरुण जी के पास न तो पैसा था और न ही नौकरी थी, फिर भी उन्होंने हम 10 दोस्तों की एक टीम बनाई जो घर घर जाकर बची कुची दवाएं मांगती थी। हम लोग चौराहों पर, मेट्रो स्टेशनों पर और मंदिरों में जा जाकर पर्चे बांटते थे और लोगों को दवाएं दान करने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे हमारी कोशिशें कामयाब होने लगी और आज देखिए, हम हर साल कोई 1 से 1.5 लाख डॉलर की दवाएं बांट देते हैं जिनसे हजारों जाने बचती हैं।
दवाएं बांटने के अलावा आपकी संस्था आजकल और क्या क्या काम करती है?
मेडिकल बैंक के अलावा आजकल हम फुटपाथी अस्पताल भी चलाते हैं जो गरीब बस्तियों में जा जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करता है। इस अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें अपना समय मुफ्त देती हैं। इसके अलावा हमने गरीब बस्तियों में लोगों को साफ सफाई से और स्वस्थ रहने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूल भी बनाए हैं।
सुना है आप आजकल दवाओं के साथ साथ चिकित्सा का दूसरा सामान भी बांटते हैं?
जी हाँ, यह काम तो बरसों से चल रहा है। मेडिकल बैंक के शुरुआती दौर में ही लोगों ने बची कुची दवाओं के साथ पुराने चश्मे, बैसाखी, वॉकर और दर्द की पट्टी जैसी चीजों का दान करना शुरू कर दिया था जिन्हें हम जरूरतमंदों में बांटते आ रहे हैं। हमने गरीबों के लिए एक रक्त कोष भी बनाया है और एम्बुलेंस की सुविधा भी जुटाई है।
फुटपाथी अस्पताल, स्कूल और एम्बुलेंस जैसे कामों में तो पैसा भी लगता होगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है?
जाहिर है, उसकी व्यवस्था भी दान से ही होती है। दवादाता मेडिकल बैंक की इन परोपकारी गतिविधियों के लिए अब लोग नकद दान भी देने लगे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर और दवा विक्रेता भी दवा कंपनियों से नमूने के तौर पर मिलने वाली दवाओं और चिकित्सा सामग्री का दान करते हैं।
संध्या जी, समय निकालकर मेडिकल बैंक के नेक कार्यों की जानकारी देने के लिए आपका और आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
संध्या जी, जन चेतना और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
संध्या जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आपकी संस्था दवा दाता मेडिकल बैंक क्या करती है?
वरुण जी, दवा दाता मेडिकल बैंक के स्वयंसेवी घर घर जाकर लोगों से उन दवाओं और चिकित्सा सामग्री को इकट्ठा करते हैं जो इलाज और इस्तेमाल के बाद बच जाती हैं। इसके बाद इन दवाओं की तारीख की जांच की जाती है और जिन दवाओं की तारीख न गुजरी हो उन्हें कोलकाता की झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद रोगियों में बांटकर उनका इलाज किया जाता है।
बड़ा ही नेक काम है संध्या जी, लेकिन इसका विचार पहले पहल किसके दिमाग में और कैसे आया?
इसका विचार लगभग 30 साल पहले हमारी संस्था के संस्थापक तरुण बोस के मन में आया। उन्हें स्कूल के दिनों से ही यह बात परेशान करती थी कि उनके आसपास की गरीब बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग पैसा न होने के कारण दवाएं नहीं खरीद पाते थे और रोगों का शिकार बन जाते थे। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी होते ही घर घर जाकर बची कुची दवाओं का दान लेना शुरू किया और उससे गरीबों के इलाज के लिए एक मेडिकल बैंक बनाया जो आज तक बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है।
शुरू शुरू में तो लोगों को ये बात अटपटी लगी होगी, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तरुण जी को?
देखिए, दिक्कतें तो हर काम की शुरुआत करने में आती हैं। मुझे याद है तरुण जी के पास न तो पैसा था और न ही नौकरी थी, फिर भी उन्होंने हम 10 दोस्तों की एक टीम बनाई जो घर घर जाकर बची कुची दवाएं मांगती थी। हम लोग चौराहों पर, मेट्रो स्टेशनों पर और मंदिरों में जा जाकर पर्चे बांटते थे और लोगों को दवाएं दान करने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे हमारी कोशिशें कामयाब होने लगीं और आज देखिए, हम हर साल कोई 1 से 1.5 लाख डॉलर की दवाएं बांट देते हैं जिनसे हजारों जानें बचती हैं।
दवाएं बांटने के अलावा आपकी संस्था आजकल और क्या क्या काम करती है?
मेडिकल बैंक के अलावा आजकल हम फुटपाथी अस्पताल भी चलाते हैं जो गरीब बस्तियों में जा जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करता है। इस अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें अपना समय मुफ्त देती हैं। इसके अलावा हमने गरीब बस्तियों में लोगों को साफ सफाई से और स्वस्थ रहने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूल भी बनाए हैं।
सुना है आप आजकल दवाओं के साथ साथ चिकित्सा का दूसरा सामान भी बांटते हैं?
जी हाँ, यह काम तो बरसों से चल रहा है। मेडिकल बैंक के शुरुआती दौर में ही लोगों ने बची कुची दवाओं के साथ पुराने चश्मे, बैसाखी, वॉकर और दर्द की पट्टी जैसी चीजों का दान करना शुरू कर दिया था जिन्हें हम जरूरतमंदों में बांटते आ रहे हैं। हमने गरीबों के लिए एक रक्त कोष भी बनाया है और एम्बुलेंस की सुविधा भी जुटाई है।
फुटपाथी अस्पताल, स्कूल और एम्बुलेंस जैसे कामों में तो पैसा भी लगता होगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है?
जाहिर है, उसकी व्यवस्था भी दान से ही होती है। दवादाता मेडिकल बैंक की इन परोपकारी गतिविधियों के लिए अब लोग नकद दान भी देने लगे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर और दवा विक्रेता भी दवा कंपनियों से नमूने के तौर पर मिलने वाली दवाओं और चिकित्सा सामग्री का दान करते हैं।
संध्या जी, समय निकालकर मेडिकल बैंक के नेक कार्यों की जानकारी देने के लिए आपका और आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास चार, प्रश्न 14 से 20। चाय के इतिहास और गुणों पर भारतीय जड़ी बूटी शोध संस्थान के निदेशक वैद्य सुकुमार सेन के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह व्याख्यान आपको 2 बार सुनाया जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं सुकुमार सेन। चाय की खोज का श्रेय चीनी सम्राट शे नोंग को दिया जाता है, जो कृषि विज्ञान और जड़ी बूटियों के परम ज्ञाता थे। वे बीमारियों को दूर रखने के लिए पानी को उबाल कर पीते थे। कहते हैं कि 5000 साल पहले गर्मियों में सम्राट शे नोंग दक्षिणी चीन के किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर गए थे। एक पड़ाव पर उनके नौकरों ने उनके लिए पानी उबालना शुरू किया। तभी तेज हवा के कारण एक जंगली झाड़ी की कुछ सूखी पत्तियां उड़कर पानी में आ गिरीं और उनका रस पानी में घुल गया। सम्राट को पानी में उन पत्तियों की सुगंध और स्वाद इतना भाया कि उसने उस झाड़ी की पत्तियों का काढ़ा बनवाकर उसके गुण दोषों का गहरा अध्ययन किया। लंबे अध्ययन और परीक्षण के बाद सम्राट शे नोंग ने पाया कि उन पत्तियों का काढ़ा पीने से थकान और तनाव दूर होता है और शरीर में नई ऊर्जा आती है। सम्राट ने इन पत्तियों को चा का नाम दिया, जो भारत में आकर चाय में बदल गया। 8वीं सदी तक आते आते चीन में चाय इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि लू यू नाम के एक चीनी विद्वान ने 20 वर्षों तक चाय की खेती, प्रजाति और स्वाद का अध्ययन करने के बाद चा चिंग नाम की एक किताब लिखी, जिसने चाय पीने की रस्म को एक संस्कृति में बदल दिया। इसी सदी के एक चीनी सम्राट को चाय इतनी पसंद थी कि वे अपने दरबार में लोगों को पुरस्कार के रूप में चाय दिया करते थे। इसके कारण चाय की लोकप्रियता चीन के कोने कोने तक फैल गई। चीन से बौद्ध छात्रों और भिक्षुओं के जरिए चाय जापान, हिंद चीन और इंडोनेशिया पहुंची, और इंडोनेशिया से 17वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी और पादरी उसे अपने साथ यूरोप लाए। उसके बाद यूरोप में चाय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डच व्यापारियों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से चाय का आयात शुरू किया। चाय की झाड़ियां दक्षिण पूर्व एशिया की उन पहाड़ी ढलानों पर सहज रूप से उगती हैं जहां खूब बरसात होती हो और ठंडी हवा बहती हो। इन्हें पहले बीजों से नर्सरी में उगाया जाता है और 6 से 18 महीनों के बाद पहाड़ी ढलानों पर रोपा जाता है। सबसे अच्छी चाय 1000 से 2000 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर उगने वाली झाड़ियों से मिलती है। ठंड के कारण इनकी बढ़ोतरी तो धीमी हो जाती है, लेकिन इनकी चाय का जायका बेहतर होता है। चाय की 2 मुख्य किस्में हैं, हरी चाय और काली चाय। वैज्ञानिकों ने दोनों ही प्रकार की चाय के गुणकारी रसायनों की पहचान कर ली है। उनका कहना है कि हरी चाय में पाए जाने वाले गुणकारी रसायन वजन को नियंत्रित रखने में सहायता करते हैं। हाल में हुए कुछ अध्ययनों के अनुसार हरी चाय डायबिटीज की रोकथाम में भी मदद करती है। ऐसे दोनों ही तरह की चाय एक ही प्रजाति की झाड़ियों की पत्तियों से बनती है, लेकिन उन्हें काटने और सुखाने की अलग अलग विधियों के कारण उनके रंग और गुणों में अंतर आ जाता है। काली चाय हमारी सतर्कता को बढ़ाती है और तनाव कम करती है, जिससे रक्तचाप को काबू में रखने और दिल की बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है। सवाल उठता है कि किस तरह की और किस तरह से बनी चाय स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इसका जवाब जर्मनी में हुए हाल के एक वैज्ञानिक शोध से मिला है। इस शोध के अनुसार चाय में दूध और चीनी डालने से उसके अधिकतर गुण बेकार हो जाते हैं, इसलिए बिना दूध की फीकी चाय अधिक हितकारी मानी जाती है। चाय में भी काली चाय से हरी चाय अधिक लाभदायक मानी गई है, जिसे चीन और जापान में पिया जाता है।
अभ्यास चार के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं सुकुमार सेन। चाय की खोज का श्रेय चीनी सम्राट शे नोंग को दिया जाता है, जो कृषि विज्ञान और जड़ी बूटियों के परम ज्ञाता थे। वे बीमारियों को दूर रखने के लिए पानी को उबाल कर पीते थे। कहते हैं कि 5,000 साल पहले गर्मियों में सम्राट शे नोंग दक्षिणी चीन के किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर गए थे। एक पड़ाव पर उनके नौकरों ने उनके लिए पानी उबालना शुरू किया। तभी तेज हवा के कारण एक जंगली झाड़ी की कुछ सूखी पत्तियां उड़कर पानी में आ गिरीं और उनका रस पानी में घुल गया। सम्राट को पानी में उन पत्तियों की सुगंध और स्वाद इतना भाया कि उसने उस झाड़ी की पत्तियों का काढ़ा बनवाकर उसके गुण दोषों का गहरा अध्ययन किया। लंबे अध्ययन और परीक्षण के बाद सम्राट शे नोंग ने पाया कि उन पत्तियों का काढ़ा पीने से थकान और तनाव दूर होता है और शरीर में नई ऊर्जा आती है। सम्राट ने इन पत्तियों को चा का नाम दिया, जो भारत में आकर चाय में बदल गया। 8वीं सदी तक आते आते चीन में चाय इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि लू यू नाम के एक चीनी विद्वान ने 20 वर्षों तक चाय की खेती, प्रजाति और स्वाद का अध्ययन करने के बाद चा चिंग नाम की एक किताब लिखी, जिसने चाय पीने की रस्म को एक संस्कृति में बदल दिया। इसी सदी के एक चीनी सम्राट को चाय इतनी पसंद थी कि वे अपने दरबार में लोगों को पुरस्कार के रूप में चाय दिया करते थे। इसके कारण चाय की लोकप्रियता चीन के कोने कोने तक फैल गई। चीन से बौद्ध छात्रों और भिक्षुओं के जरिए चाय जापान, हिंद चीन और इंडोनेशिया पहुंची, और इंडोनेशिया से 17वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी और पादरी उसे अपने साथ यूरोप लाए। उसके बाद यूरोप में चाय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डच व्यापारियों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से चाय का आयात शुरू किया। चाय की झाड़ियां दक्षिण पूर्व एशिया की उन पहाड़ी ढलानों पर सहज रूप से उगती हैं जहां खूब बरसात होती हो और ठंडी हवा बहती हो। इन्हें पहले बीजों से नर्सरी में उगाया जाता है और 6 से 18 महीनों के बाद पहाड़ी ढलानों पर रोपा जाता है। सबसे अच्छी चाय 1,000 से 2,000 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर उगने वाली झाड़ियों से मिलती है। ठंड के कारण इनकी बढ़ोतरी तो धीमी हो जाती है, लेकिन इनकी चाय का जायका बेहतर होता है। चाय की 2 मुख्य किस्में हैं, हरी चाय और काली चाय। वैज्ञानिकों ने दोनों ही प्रकार की चाय के गुणकारी रसायनों की पहचान कर ली है। उनका कहना है कि हरी चाय में पाए जाने वाले गुणकारी रसायन वजन को नियंत्रित रखने में सहायता करते हैं। हाल में हुए कुछ अध्ययनों के अनुसार हरी चाय डायबिटीज की रोकथाम में भी मदद करती है। ऐसे दोनों ही तरह की चाय एक ही प्रजाति की झाड़ियों की पत्तियों से बनती है, लेकिन उन्हें काटने और सुखाने की अलग अलग विधियों के कारण उनके रंग और गुणों में अंतर आ जाता है। काली चाय हमारी सतर्कता को बढ़ाती है और तनाव कम करती है, जिससे रक्तचाप को काबू में रखने और दिल की बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है। सवाल उठता है कि किस तरह की और किस तरह से बनी चाय स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इसका जवाब जर्मनी में हुए हाल के एक वैज्ञानिक शोध से मिला है। इस शोध के अनुसार चाय में दूध और चीनी डालने से उसके अधिकतर गुण बेकार हो जाते हैं, इसलिए बिना दूध की फीकी चाय अधिक हितकारी मानी जाती है। चाय में भी काली चाय से हरी चाय अधिक लाभदायक मानी गई है, जिसे चीन और जापान में पिया जाता है।
अभ्यास चार और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।